तो आप यहां तक क्या पैदल आई हैं? अर्पिता अब भी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। राधिका ने अब की बार उसके इस फिजूल के सवाल को सुनकर खींचते हुए उसके सर पर चपट लगा दी। दिमाग क्या कॉलेज में छोड़कर आई हो अपना, या उन आवारा लड़कों से लड़ते हुए वहीं गिराई? पुलिस स्टेशन क्या घर के बगल में है जो मैं पैदल टहलते हुए इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाती? ऑटो से आई थी और अब उसी से हम वापस घर भी जाएंगे। राधिका ने तो बढ़िया से उसे फटकार लगाई थी। अप्पू मैडम किसी रूठे हुए बच्चे जैसे नाक से कोड़े, अपनी गालों को फुलाए, अपने सर को अपनी हथेली से सहलाते हुए नाराजगी भरी निगाहों से उसे देखने लगी थी।
जी जी, हाथ ना चलाया कीजिए,
तुनकते हुए उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शिकायत लगाई और मुंह बिचका लिया। अक्षय की आंखों के आगे एकाएक अंतरा का चेहरा उभर आया और लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखर गई। अभी हल्के से बस चपत ही लगाई है, ज्यादा नाटक किया तो अभी देंगे दो रखकर, सारी नौटंकी निकल जाएगी। एक बार फिर राधिका ने थप्पड़ दिखाते हुए उसे डांट दिया। किसी सहमे बच्चे जैसे अर्पिता झट से घबराते हुए दो कदम पीछे हट गई और निचले होंठ को बाहर निकालते हुए ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी मासूम बच्चे पर बड़ा अत्याचार किया गया हो और अब बस वो रोने ही वाला हो। अप्पू बस कर दो, हर वक्त नौटंकी सोचती रहती है तुम्हें। अपनी छोटी बहन की नौटंकी देखकर राधिका खींच उठी। वहीं उसे यूं परेशान होते देखकर अर्पिता खिलखिलाकर हंसते हुए उसके गले से लिपट गई। कर लिया जी भरकर मुझे परेशान, तो अब घर चलें? राधिका ने प्यार से अपनी नाराजगी जाहिर की और अर्पिता ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। फिर सामने खड़े अक्षय और माधव को देखने लगी। चलिए अब हम चलते हैं, वरना मेरी प्यारी स्वीट सीधी गुस्से में चंडी का रूप धरकर यहीं बीच सड़क पर मुझ जैसी मासूम बच्चे की बलि चढ़ा देंगी। अब भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आई थी। अपनी शरारत से एक बार फिर उसने राधिका को छेड़ दिया था और उन दोनों बहनों के बीच की ये नोकझोंक देखकर बाकी तीनों मुस्कुराने लगे थे। बिल्कुल, अब आप जा सकती हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा तो हमारे साथ ही चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, अक्षय ने सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो जैसे ही चुप हुआ, राधिका ने झिझकते हुए उसके इस ऑफर को बड़ी ही विनम्रता से ठुकरा दिया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों रिक्शे से चले जाएंगे। अक्षय ने उसे रोकना चाहा, पर फिर उस पर दबाव डालना उसे ठीक नहीं लगा। अहाना से सुना था उसने कि राधिका एक स्वाभिमानी लड़की है, किसी और पर निर्भर होना या किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती, इसलिए अक्षय ने आगे कुछ नहीं कहा। राधिका अर्पिता के साथ वहां से चली गई तो अक्षय भी माधव और शिखा के साथ निकल गया। माधव, कुछ देर रुको, कुछ बात करनी है तुमसे। रेस्टोरेंट में तो बात अधूरी ही रह गई थी। माधव अपने घर आने पर कार से उतरने लगा था जब अक्षय ने उसे रोकते हुए ये बात कही थी। माधव को याद आया कि वे दोनों रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे, पर शिखा के फोन के कारण हड़बड़ी में वहां से निकल गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई थी। माधव ने पल भर सोचा, फिर उसकी ओर पलटते हुए बोला, 5 मिनट यहीं रुको, शिखा को अंदर तक छोड़कर आता हूं, वरना मम्मी सवाल करेंगी, फिर वापस वहीं चलते हैं, वहीं बात कर लेंगे। अक्षय ने हामी भरी तो माधव शिखा के साथ अंदर चला गया। कुछ देर बाद दोनों माधव के रेस्टोरेंट में उसके रूम में मौजूद थे। बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? तुम राधिका को पसंद करते हो ना? अक्षय ने बिना किसी लाइट लपेट के या बात को घुमाई सीधे से ही उससे सवाल कर लिया था। उसका सवाल सुनकर माधव का चेहरा सफेद पड़ गया और आंखें हैरत से फैल गई। वो हैरान परेशान सा उसे देखने लगा। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे और राधिका के रिश्ते के बारे में कुछ कुछ बातें जानता हूँ मैं, और जहाँ तक मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है, तुम्हारे व्यवहार से, राधिका को देखने के अंदाज से साफ जाहिर होता है कि तुम आज भी पसंद करते हो उसे। बस श्योरिटी के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे मन में उसे लेकर कैसे भाव हैं और तुम उससे दोस्ती क्यों करना चाहते हो। जैसे जैसे अक्षय बोल रहा था, माधव के चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। आखिर तक आते आते उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। राधिका और मेरी मुलाकात इत्तेफाक से हुई थी, तब मुझे उनसे प्यार था या बस वक्ती लगाव या आकर्षण कहना जरा मुश्किल है, पर पहली मुलाकात में ही नजरों को भा गई थी वो, और दूसरी मुलाकात में अपने सहज सरल सौम्य व्यवहार से सीधे दिल में उतर गई। बस उस एक मुलाकात में हुई चंद बातों ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि जैसी जीवन साथी की चाहत मुझे है, राधिका बिल्कुल वैसी है। पहले शादी के लिए तैयार नहीं था मैं, क्योंकि पहले अपनी बहन की शादी करना चाहता था, पर जब राधिका की तस्वीर देखी तो इनकार कर ही नहीं सका। बात आगे बढ़ी और कहीं ना कहीं अनजाने तौर पर मेरा दिल उनके साथ जिंदगी बिताने के सपने सजाने लगा, पर जैसे अचानक किस्मत ने मुझे उनसे मिलवाया था, वैसे ही अचानक छीन भी लिया और उनके साथ अपनी जिंदगी बिताने की ख्वाहिश मन के किसी कोने में दबकर रह गई। पर उनकी छवि शायद दिल की गहराइयों में बस चुकी थी, इसलिए उनके बाद हर लड़की में मैंने जाने अनजाने तौर पर उन्हें तलाशा और आखिर में परिवार के दबाव में एक अनचाहे रिश्ते में बंध गया। वो वक्त बहुत मुश्किल था मेरे लिए, दिल में राधिका थी और जिंदगी में सुमन। शादी तो कर ली थी मैंने, पर सुमन को अपनाने में वक्त लग गया मुझे। राधिका को लेकर मेरे मन में जो भी भावनाएं और एहसास थे, मैंने सबको अपने दिल में दफन कर लिया, पर सालों बाद भी उन्हें कभी भुला नहीं सका। उनका सरल स्वभाव मेरे मन में बस गया था, जिसे भुलाना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण है, कोई रिश्ता ना होकर भी अजीब सा कनेक्शन महसूस करता हूँ उनके साथ। कोई अनदेखी सी डोर है जो मुझे पहले भी उनकी ओर खींचती थी, और आज भी उनसे अलग से जुड़ाव का एहसास होता है मुझे। उनके साथ में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। ये सब क्या है मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जब भी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा, हमेशा राधिका का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया है, और मैंने उन्हीं से शादी करना चाहा था, पर किस्मत को हमारा मिलना मंजूर नहीं था। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मेरी शादी उनसे नहीं हुई और राधिका को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। मैं अतीत में जाकर जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकता, पर आज और अपने आने वाले कल को सुधारने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जानता हूँ कि राधिका को अपनी जिंदगी में शामिल करने का मौका खो चुका हूँ मैं, पर एक दोस्त के नाते ही सही, पर उनका जिंदगी भर का साथ आज भी चाहता हूँ। इस बार ज्यादा उम्मीदें नहीं है, बस चाहता हूँ कि उनसे किसी तरह जुड़ा रहूँ, हमारे रिश्ते को एक नाम मिल जाए और मेरे कारण उन्हें जो भुगतना पड़ा उसकी थोड़ी भरपाई कर सकूँ। लेकिन ये मेरी सोच है, राधिका मुझसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शायद आज भी उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है और गलती थी भी मेरी। मैंने अपने व्यवहार से उन्हें उस रिश्ते को लेकर उम्मीद दी और बाद में बेरहमी से उस उम्मीद के साथ उनके विश्वास को भी तोड़ दिया। मेरे पीछे मेरे ही घर से उस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया गया, उन्हें ठुकरा दिया गया, पर मुझे खबर ही नहीं हुई। माधव के चेहरे पर कई तरह के भाव मौजूद थे। अक्षय उसकी स्थिति समझ रहा था क्योंकि कभी किसी हद तक ये सब उसने भी फेस किया था। उसने माधव के कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ माधव, तुमने कुछ भी जानकर नहीं किया, इसलिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जो आज तुम्हारे पास है उसे संभालने और संवारने की कोशिश करो। भले सालों पहले राधिका को किस्मत ने तुमसे दूर कर दिया हो, पर आज फिर किस्मत ने तुम्हें उससे मिलवाया है। एक कोशिश करके देख लो, शायद वे सपने उस बार अधूरे रह गए इस बार पूरे हो जाएं।
तुम भी अकेले हो, राधिका भी अकेली है, तुम दोनों ने शादी से एक सीख ली है, जिंदगी में एक जैसी सिचुएशन फेस की है, तो हमदर्द से हमराज और हमराज से हम सफर तक का सफर तय करना इतना भी मुश्किल नहीं। बस तुम्हें राधिका और अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त देना है। माधव समझ सब रहा था पर उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर झलकती निराशा और आंखों में पसरी वीरानी बहुत कुछ कह गई थी। मैं इस बार ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस राधिका का दोस्त बनकर जिंदगी के इस सफर पर एक सच्चे दोस्त जैसे उनका साथ निभाना चाहता हूँ। जिंदगी में सच्चे दोस्त ही सच्चे हमसफर भी साबित होते हैं, और जिस रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हो उसकी नींव इतनी मजबूत होती है कि दुनिया की मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अक्षय अपनी बात कहते हुए मुस्कुराया, फिर उसके कंधे को थपथपाते हुए उठकर खड़ा हो गया। अब चलता हूं मैं, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। दोनों एक दूसरे के गले लगे, फिर अक्षय वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया माधव के मन में कई सवाल। टू बी कंटिन्यूड।